लास्ट क्लास में हम लोगों ने 13वां अध्याय के बारे में पढ़ा था। तो 13वां अध्याय थोड़ा सा टफ था, और प्रकृति पुरुष चेतना ये तीन चीज़ें उसका शीर्षक था, प्रकृति पुरुष और चेतना, जिसमें हमने क्षेत्र के बारे में जाना, क्षेत्रज्ञ के बारे में जाना, प्रकृति पुरुष, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में जाना। हमने उसको चार भागों में डिवाइड किया था कि किस तरीके से वाइजेस्ट करके, W फॉर वाइज क्वेश्चन, अर्जुन के कुछ प्रश्न थे। फिर ज्ञान की पद्धति क्या होती है, हमने 8 से 12 श्लोक में चर्चा किया, जिसमें भगवान ने बताया ज्ञान का अर्थ क्या है, और आत्मा और परमात्मा के बारे में नॉलेज दिया गया। फिर पुरुष के बारे में बताया गया, और एक व्यक्ति कैसे एक दृष्टा बन सकता है, एक सीकर से सीयर बन सकता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। फिर दिव्यता के बारे में चर्चा किया 30 से 35 नंबर श्लोक में। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये है तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण। तो हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा की है, ये गुण क्या होते हैं। आज हम थोड़ा उसके बारे में स्पेशली बात करेंगे, इन गुणों के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर जो है, खास करके भगवद गीता का, ये इन तीन गुणों के बारे में ही डिस्कस करता है। तो सारा ज्ञान जो है इस 14वें अध्याय में दिया हुआ है इन गुणों के बारे में, और खास करके आप देखेंगे आगे के अध्यायों में भी इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, इन गुणों के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि भगवान आगे भी ये शब्द यूज करेंगे प्रकृति के गुणों के बारे में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। तो इसको हमने चार भागों में डिवाइड किया हुआ है, TRAP, T फॉर थ्री मोड्स, R फॉर रेस फॉर प्रोमिनेंस, और A फॉर एक्शंस इन द मोड्स, और P फॉर प्योर लाइफ। तीन गुण, प्रधानता के लिए स्पर्धा, गुणों के अंतर्गत हमारे कर्म, और लास्ट में पवित्र जीवन। तो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि एक चूहा, वो कुछ लटका हुआ देखता है, माउस ट्रैप जो होता है, एक एक बॉक्स होता है जिसमें कि चूहे फंसाए जाते हैं, तो उसमें देखता है चूहा कि कुछ उसके लिए लटका हुआ है। वो सोचता है, अरे कोई पागल आदमी है, हाँ मूर्ख आदमी है, ऐसे लटका के चला गया। और वो अंदर उसको खाने के लिए जाता है, उस मिठाई को या फिर जो भी लगा हुआ होता है उसको खाने के लिए जाता है। और जैसे ही वो उसको खाने के लिए अपना मुंह को बढ़ाता है और खींचता है, तुरंत जो है वो माउस ट्रैप का जो डिब्बा है वो पैक हो जाता है, अभी वो उसके अंदर बंद हो जाता है। तो सेम वैसे ही इस संसार में जो माया देवी है, वो हमारे लिए बहुत सारे पदार्थों को ठीक वैसे ही लटकाती है जैसे कि वो मिठाई जो है वो चूहे के लिए लटकाई जाती है। और जैसे ही हम उन कार्यों को करने के लिए, उन पदार्थों को पाने के लिए प्रयास करते हैं, तुरंत हम भी फंस जाते हैं। आपको पता है गुण, गुण शब्द जो है मोड्स, तो गुण का एक अर्थ रस्सी भी होता है, गुण मतलब रस्सी। तो रस्सी की सहायता से हम किसी को भी बांध सकते हैं, तो वही माया देवी जो है वो उन रस्सियों के द्वारा हमको बांध देती है। हालांकि ये रस्सी हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आप कोई कोई इस प्रकार से पकड़ लिया जाता है, तब कोई समझ जाएगा इजिली कि ये व्यक्ति जो है वो फंस गया है। जैसे एक कोई बच्चा है, उसका कनेक्शन उसकी माँ से होता है, क्योंकि वो माँ से प्रेम करता है, माँ को जानता है। जब वो देखता है पिता को, तो सोचता है पिता भी एक अच्छे व्यक्ति हैं, माता की हेल्प कर रहे हैं। इस तरीके से कनेक्शन बढ़ता है, माता से पिता का कनेक्शन हो गया, फिर साथ साथ में भाई बहनों का कनेक्शन होता है, फिर उसके दोस्तों के साथ कनेक्शन होता है, फिर उसकी शादी हो जाती है तो पत्नी के साथ कनेक्शन होता है, बच्चे होते हैं उनसे कनेक्शन होता है, उनकी शादी होती तो, और ऐसे करते 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 उसका कनेक्शन जो है बढ़ता चला जाता है, उसके संबंध जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे संबंध बढ़ते चले जाते हैं इस संसार में, हम जो है उतना अटैच्ड होते जाते हैं। तो उससे ज्यादा, जितना ज्यादा संबंध हमारे होंगे, हम उतना ज्यादा अटैच्ड रहते हैं, उन अटैचमेंट के कारण हम एक हिसाब से बंध जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति का बच्चा फर्स्ट रैंक को पाता है, तो ये व्यक्ति खुश हो जाता है, ये खुद फर्स्ट रैंक नहीं लाया, उसके बच्चे ने फर्स्ट रैंक लाया है, तो ये खुश हो जाता है। और कभी मान लो किसी को बुखार हो गया, तो ये व्यक्ति दुखी हो जाता है, इसको लगता है कि इसको ही बुखार हो गया है। तो जब हम दूसरे को सुखी देखते हैं, संबंधियों को अपने, तो हम खुश हो जाते हैं, और जब हम संबंधियों को दुखी देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। ऐसा हमेशा चलता रहता है, ये ही है बंधन, ये इन गुणों का बंधन है। जैसे एक और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक लैपटॉप है, और लैपटॉप लेके मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं। ट्रेन में सफर करते समय मैं नीचे बैठा हुआ हूं खिड़की पास, और मैंने लैपटॉप वाला बैग जो है वो ऊपर रख दिया है। अपर बर्थ पे। तो मान लीजिए थोड़ी देर में कोई व्यक्ति अपर बर्थ पे बैठने के लिए जाना चाहता है और वो उधर गया, तो तुरंत मेरा दिमाग क्या बोलेगा कि देखो कहीं ऐसा ना हो वो लैपटॉप चोरी हो जाए, तो तुरंत मैं खड़ा होकर लैपटॉप को अपनी गोद में रख लूंगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारा संबंध है, इसलिए उसको खोने का एक डर रहता है। अभी अब दूसरे नजरिए से अगर इसको देखें तो मैं उस लैपटॉप के साथ जो है फंस गया हूं, बंध गया हूं। तो भले ही हमको दिख नहीं रहा लेकिन ये पता चलता है। कभी कभी हम देखते हैं कोई बिना टिकट वाला व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा होता है और टीसी उसको पकड़ लेता है, तो टीसी उसको पकड़ के उस व्यक्ति को पकड़ के नहीं खींचता है, वो टीसी क्या करता है उसके बैग को ले लेता है और बैग लेके वो आगे जाता है, ये आदमी बैग के पीछे पीछे आता रहता है क्योंकि बैग को छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि बैग से इतना ज्यादा वो अटैच है। अभी ये बैग जो है दिख नहीं रहा कि उसके साथ उसका संबंध है, लेकिन एक संबंध है जो बिना दिखते हुए भी है। तो इस तरीके से हम इस संसार में जीवन जीते हैं। अभी इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो गुण है इनके बीच में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। कैसा कंपटीशन चलता है? कभी कभी सतोगुण हावी होता है, कभी कभी रजोगुण हावी होता है और कभी कभी तमोगुण हावी होता है। तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे कोई मान लीजिए रजोगुण के अंतर्गत में आता है तो क्या करेगा, चिल्लाएगा, बहुत तेज चिल्लाएगा, और जो सतोगुणी व्यक्ति होगा बोलेगा नहीं नहीं चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर वो सतोगुणी कैसा, ज्ञान के माध्यम से बताएगा, देखो अगर तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारी पत्नी नाराज हो जाएगी, वो मायके चली जाएगी, उसके बाद तुमको ही काम करना पड़ेगा, कुकिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी, नौकरी भी खुद ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए तुम परेशान होगे। वो ज्ञान की बातें करेगा जो सतोगुण में व्यक्ति होता है। तो अभी अगर हम सतोगुण को पोषण देंगे तो सतोगुण आगे बढ़ेगा, और रजोगुण को पोषण देंगे तो हम कमजोर होंगे और रजोगुण आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इन कठिन सिचुएशंस जो होंगी हमारे सामने, उनके सामने हम कैसे बाहर आ सकते हैं, वो कब हो सकता है, जब हम इन गुणों को समझें। इन गुणों को समझेंगे कि हम ये गुण कैसे कार्य करते हैं और इन गुणों के अंतर्गत मनुष्य कैसे कार्य करता है। अगर हम इसको समझेंगे तो फिर हम बाहर आने का सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इसे बाहर आया जाए। तो इन गुणों के अंतर्गत कोई जीव कैसे कार्य करता है वो भी हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्यूबलाइट है व्हाइट कलर की, उस व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट पे अगर ग्रीन कलर की पॉलिथीन लगा दी जाएगी तो कलर कैसा निकलेगा, ग्रीन निकलेगा। रेड कलर की पॉलिथीन लगाई जाएगी तो रेड कलर निकलेगा, व्हाइट लगाएंगे तो व्हाइट ही निकलेगा, येलो लगाएंगे तो येलो निकलेगा, ब्लू लगाएंगे तो ब्लू निकलेगा। जैसी पॉलिथीन उस पर चढ़ा देंगे वैसा उसका कलर निकलेगा। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो सेम है लेकिन उसकी कवरिंग जो है वो इन डिफरेंट जो विभिन्न गुण हैं इनके द्वारा वो डिफरेंट होती है। इस वजह से गुण जो है हमको कवर कर लेते हैं। आत्मा सेम है, सबके आत्मा सेम है, और आत्मा में आत्मा रजोगुणी सतोगुणी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कवरिंग है वो जो है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की हो जाती है। तो जैसे कोई व्यक्ति कभी कभी पिशाच किसी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, तो पिशाच जब किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं तो वो व्यक्ति चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, उसको पिशाच के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। जैसा वो पिशाच बोलता है उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। ठीक वैसे ही ये जो गुण है ये जब हमको कैच कर लेते हैं तो हमें माया के अनुसार ही डांस करना पड़ता है इस संसार में। जैसे कठपुतली होती है, ये देखिए इस फोटो में दिखाया गया है, तो नीचे दो व्यक्ति दिख रहे हैं वो कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं। ऊपर जो तीन गुण है, ब्लू मतलब तमोगुण, रेड मतलब रजोगुण और येलो मतलब सतोगुण, वो उनसे कार्य करा रहे हैं। तो कठपुतली की तरह हम कार्य करना शुरू करते हैं और ये गुण किसके हैं, ये माया के गुण है। हम ये नहीं कह सकते कि ये माया के द्वारा है, नहीं, हमें जो गुण में हम हैं वो हमारी इच्छा के कारण ही है। जैसे कोई मान लीजिए दारू पीना चाहता है, हाँ, तो दारू पीने के लिए वो सतोगुण में होगा तो दारू नहीं पिएगा, जब उसको तमोगुण में होगा तभी वो दारू पी सकता है, इसलिए तमोगुण दिया गया है जिससे कि वो दारू को पी सके। हाँ, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई पानी, अभी जैसे बारिश हो रही है तो कभी कभी वो जो पानी की लाइन है, सीवर लाइन है, वो जैम हो जाती है। जैम हो जाती तो क्या होता है, जैम होने से कुछ दिनों में मच्छरों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, ठीक नहीं, तो मच्छर लोग उधर आने लगते हैं। ऐसे ही अगर हम सतोगुणी कार्य कुछ करेंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति कीर्तन प्रवचन करता है तो कुछ लोग आएंगे, अपने आप से आ जाएंगे कुछ लोग, जैसे कि आप लोग अभी ये प्रवचन चल रहा है भगवद्गीता के जो ओवरव्यू लेक्चर चल रहे हैं, तो आप लोगों की रुचि है इसलिए आप लोग भगवद गीता जानना चाहते हो, आप लोग ये अटेंड कर रहे हो। जिसकी जिसमें रुचि होती है वो उस तरीके के गुणों की तरफ पीछे भागता है। जैसे सुअर होता है तो सुअर क्या देखता है, सुअर मल की तरफ भागता है, कहां पे मल पड़ा हुआ है, कहां पे गंदगी है, मैं उधर जाऊं। और कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो जहां पे भगवान की भक्ति की बात चल रही तो वो वहां पे आने का प्रयास करता है। तो ये अपने अपने स्वभाव के अंतर्गत होता है। तो आपकी रुचि के कारण आप सुन रहे हो। बाकी ये एडवर्टीजमेंट तो बहुत लोगों को किया गया था कि भाई भगवद गीता का ओवरव्यू सेशन चल रहा है। तो चार वर्ण हैं, आप सबको पता होंगे, चार वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण में ब्राह्मण जो है उसमें सतोगुण प्रधान रहता है और क्षत्रिय में रजोगुण प्रधान रहता है, और जो वैश्य है उसमें रजोगुण और तमोगुण दोनों मिक्स रहता है, और जो शूद्र है वो तमोगुणी होता है। तो हम देखते हैं इस संसार में हर व्यक्ति अपने गुणों के अंतर्गत कार्य करता है। हर व्यक्ति अपने गुणों के अंतर्गत कार्य करता है और उन गुणों में ही वो वर्क करके वो आगे फंसता है। तो कैसे हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं, हम जानते हैं भगवद्गीता के 14वें अध्याय में आगे बढ़ के। तो 13 और 14वें अध्याय में संबंध क्या है, भगवान 13.22 में कहते हैं कि कैसे जीव अपने भोग की इच्छा के कारण माया के बंधनों में फंस जाता है। अब 14वें अध्याय में बताया गया कि किस प्रकार फंसता है वो। आप ये फोटो देख रहे होंगे, इसमें वो किस तरीके से पैसे के पीछे भाग रहा है, यानी रजोगुण है, हाँ, और ये कैसे इतना सारा खा रहा है, कैसे वो बंधा हुआ है पैसे के चक्कर में। तो बोलते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिंजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्योन जन्मसु। जीव जो है, ये वाला हमने श्लोक पढ़ा था कि जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण होता है। इस तरह उसे कभी कभी उत्तम, कभी कभी अधम योनियां प्राप्त होती हैं। कभी उसको उच्च लोक मिलते हैं, कभी उसको निम्न लोक में जाना पड़ता है। तो ये यहां से जो है लिंक मिलता है कि 13वें और 14वें अध्याय में क्या लिंक है। अब 14वें अध्याय में भगवान इसी गुणों के बारे में आगे बताना शुरू करता है। तो देखिए इस अध्याय में कृष्ण वर्णन करते हैं कि गुण क्या है, कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार वे जीवों को बांधते हैं, कैसे वे कृष्ण भक्ति के द्वारा नष्ट किए जाते हैं। सत्वगुण, सत्वगुण में व्यक्ति क्या है, खुश रहता है, ज्ञान रहता है, ज्ञान की ओर भागता है और दूसरों को अच्छी राय देता है। रजस, रजस में व्यक्ति क्या करता है, बहुत इच्छाएं उसके अंतर्गत होती हैं तो वो दूसरों को भी परेशान करता है रजस की वजह से। और तमस, जब व्यक्ति बिल्कुल सोचता है अभी मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ, तो समझ लेना चाहिए वो तमोगुण में है। प्रथम दो श्लोकों में कृष्ण उस परम ज्ञान की महिमा बताते हैं जिसका वर्णन वो इस अध्याय में करेंगे। श्री भगवान वाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धि मतो गतः। बोलते हैं कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। इसको जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है, जो इस ज्ञान को प्राप्त किए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्या मम सार्धं मेमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेनावृथन्ति च। बोलते हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी प्रकृति को प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह सृष्टि के समय न तो उत्पन्न होता है न प्रलय के समय विचलित होता है। तो ये ज्ञान जो है गुणों का, ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। आगे भगवान अभी संबंध बताते हैं जीव प्रकृति और स्वयं भगवान। बोलते हैं मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्य हम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। बोलते हैं मम योनिर महत ब्रह्म, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नाम की जो समग्र भौतिक वस्तु है उसका जन्म स्रोत ब्रह्म है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिसे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो भगवान जो हैं वो इस ब्रह्मांड को जीवों से भरते हैं, किसके द्वारा, माता दुर्गा के द्वारा। इसलिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तिया संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। बीज प्रदान करने वाला पिता कौन है, मैं हूं, मैं बीज प्रदान करता हूं। सर्व योनिषु कौन्तेया, एक दो योनिया नहीं, जितनी 84 लाख योनिया है ना, सारी योनियों का मैं ही पिता हूं। तासाम ब्रह्म महद योनिर, बोलते हैं कि इनमें उनका प्रकृति में जन्म मेरे द्वारा संभव है। तो इस प्रकार से भगवान किसके द्वारा, माता दुर्गा के द्वारा यहां पे सारे संतानों को भेजते हैं, सारे जीवों को भेजते हैं। ये आप देख रहे हैं इतनी सारी जो हैं प्रजातियां हैं, देखिए ये सारी प्रजातियों के पिता कौन है। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं उन सबका पिता हूं। ये तो बहुत कम हमने दिखाया है, कुछ 40-50 होंगे बहुत ज्यादा, पर भगवान 84 लाख योनियां जो हैं सबके भगवान ही पिता है, वास्तविक पिता। अब भगवान भगवद गीता के इन प्रकृति के तीन गुणों के बारे में बताते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निम्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। बोलते हैं भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये कौन है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, ध्यान से पढ़िएगा, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों में बंध जाता है। तो जीव जो है जब इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो इन गुणों में बंधता है, यानी आध्यात्मिक संसार में ये गुण वर्क नहीं करते हैं। ये कहां गुण वर्क करते हैं? केवल इसी संसार में वर्क करते हैं, इस भौतिक प्रकृति में ही काम करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, तीन चीजें तीन गुणों में बताया गया है। व्यक्ति बहुत खुश रहता है, सतोगुण में रहता है। कोई बहुत क्रियाशील है, रजोगुण में रहता है। कोई अन्य व्यक्ति असहाय है तो तमोगुण में है। गुणों के प्रभाव में इस प्रकार से जीवन होता है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निम्ननंति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। सतोगुण कैसा रहेगा? बिल्कुल प्रसन्न रहता है, हमेशा प्रसन्न रहेगा। रजोगुणी जो होगा उसमें काम, क्रोध, लोभ, स्पर्धा, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को परेशान करना, और जो उनके पास है उसमें आसक्ति होना, जो उनके पास नहीं है उसमें चिंता होना, उसकी चिंता करना कि देखो मेरे पास नहीं है, ये सब रजोगुण में रहता है। और तमोगुण में वो हतोत्साहित रहता है हमेशा। वो सोचता है कि वो कोई उसको बोले कि देखो तुम बहुत अच्छे हो, हाँ तुम ठीक हो जाओगे, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता। इस प्रकार से ये तमोगुण का प्रभाव होता है। तो ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन गुण जो हैं माया देवी के होते हैं। अभी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये जीव को बांधते हैं। सतोगुण द्वारा बंधन, रजोगुण द्वारा बंधन और तमोगुण द्वारा बंधन। बोलते हैं तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशाकमनामयं सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघा। सतोगुण जो है वो अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो प्रकाश प्रदान करने वाला होता है। प्रकाश कमनामयम, यानी अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको सतोगुण में जाना होगा, और साथ साथ में ये मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला भी है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो दो चीजों से बंधते हैं, सुख से और ज्ञान से, वो इन दो चीजों से बंध जाते हैं। फिर दूसरा है रजोगुण। रजोरागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्य बधनाति कौन्तेया कर्म संगेन देहिनम। इसमें क्या है, रजोरागात्मकम विद्धि, इनको असीम आकांक्षाएं होती हैं और तृष्णाएं होती हैं। खास करके स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है वो रजोगुण के द्वारा होता है, और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंधता है। पहला वाला बंध रहा था ज्ञान से और सुख से, ये दूसरा वाला सकाम कर्मों से बंध जाता है। अभी तीसरा, तमस्तु ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्नि बदनाति भारत। बोलते हैं तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के कारण पागलपन होता है, आलस आती है और नींद आती है जो बद जीव को बांध लेते हैं। तो सतोगुण जो है वो कैसा है, शुद्ध है, वो प्रकाश पैदा करता है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए हम कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे अगर सतोगुण में रहेंगे, हाँ, जैसे भगवान के भगवान के किताबों को पढ़ना, कुछ लिखना, कोई गायक होता है, कोई राइटर होता है, भगवान के बारे में लिखना चाहता है, कुछ सोचने वाला ऐसा व्यक्ति कौन होते हैं? सतोगुणी व्यक्ति होते हैं। उनकी पहचान क्या है? ये लोग अपने आप को दूसरों से बहुत स्मार्ट समझते हैं, हाँ, कि मैं तो सतोगुण में, मैं किसी का नुकसान नहीं करता। हाँ, तो वो कभी कभी वो ढीले भी पड़ जाते हैं। कभी कभी जब वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो वो हर चीज नहीं जान सकते, इसलिए कभी कभी वो आलसी भी हो जाते हैं। रजोगुणी लोग जो हैं उनके अंदर वेग बहुत होते हैं। वो क्या सोचते हैं? अरे देखो, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मुझे भी बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे भी बड़ा बंगला चाहिए, मैं भी अमेरिका जाना चाहता हूं। इस तरीके से उनके अंदर बहुत सारी चीजों की तृष्णा होती है। तृष्णा मतलब प्यास। मान सम्मान चाहिए मुझे, उसने मेरे लिए वो खड़ा नहीं हुआ, उसने मेरे को हरे कृष्णा नहीं बोला, हाँ, वो मेरे से बात नहीं करता है, मैं लीडर होना चाहिए। ऐसा करके उनके अंदर क्या रहता है? रजोगुण का प्रभाव रहता है। वो खास करके स्त्रियों से बहुत आसक्त होते हैं। और वो कैसे बंधते हैं? कर्म संगे न भारता, कर्मों के द्वारा वो बंध जाते हैं। फिर तीसरा गुण, तमोगुण, कम्स फ्रॉम अज्ञान, अज्ञान से आता है। तो बोलते हैं मोहनम सर्वदेही नाम, सारे देहियों को, सारे देहवासियों को वो मोहित कर देता है। और क्या होता है? प्रमाद आता है, आलस आता है, निद्रा आती है। कभी कभी उनको बोलो कुछ काम तो बोलेंगे हम बाद में करेंगे, कल कर देंगे, पोस्टपोन करते रहते हैं। तो वो बिल्कुल कैसे रहते हैं? तमोगुणी लोग रहते हैं। अब गाँव में देखे होंगे कभी कभी वो सुबह सुबह चाय की दुकान पे आएंगे, पूरे दिन चाय की दुकान पर बैठे रहेंगे, बात करते रहेंगे, पान की दुकान पर बैठे रहेंगे, फालतू बात करते रहेंगे, टाइम खत्म करेंगे, घर चले जाएंगे, सो जाएंगे। इस तरीके से लोग होते हैं। वो कौन से लोग हैं? तमोगुणी लोग। वो बोलते पिताजी का पैसा है, उड़ा लो। तो कभी कभी सोते हैं तो पूरे दो तीन दिन तक सोते रहते हैं। एक बार एक मेरा फ्रेंड था, तो वो सैटरडे नाइट को सोया और मंडे को उठा सीधा, पूरा दिन पूरा रात सोता रहा संडे को। तो ऐसे तमोगुणी लोग होते हैं। अभी जब उनकी स्थिति ऐसी होती है कि बीमार पड़ते हैं इतना सब करने के कारण, तो बीमार पड़ने के बाद नशा करना शुरू करते हैं, एडिक्शन कुछ हो जाता है, अवैध संग करने लगते हैं, तबीयत खराब होती है, दर्द होता है, पैसा खूब खर्चा करते हैं। इस तरीके से बाहर इतना पोल्यूशन है, और वो भी सिगरेट पी के वो पोल्यूशन को अंदर भी लेना पसंद करते हैं। तो जो तमोगुणी लोग हैं वो एक हिसाब से देखा जाए तो बोला जाए कि वो पागल ही लोग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पागल लोग होते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों गुणों के बारे में डिटेल दी जाती है। फिर बोलते हैं सत्वम सुखे संजयति रजह कर्मणि भारता ज्ञान मावृत तु तम प्रमादे संजयत्युता। बोलते हैं भाई सुनो, सत्वगुण जो है मनुष्य को सुख से बांध देता है, रजोगुण कर्म बंधन से बांधता है, सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है और उसे पागलपन से बांध देता है। हाँ। तो सतोगुण जो है वो प्रकाश देता है और जो पाप होते हैं उनको खत्म करता है। रजोगुण मतलब बहुत सारी इच्छाएं, कभी कभी उन इच्छाओं के कारण वो सकाम कर्म करता है। सकाम कर्म मतलब जिसमें फल की इच्छाएं होती हैं, तो उन फल की इच्छाओं के कारण उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। आपने देखा होगा स्काई डाइविंग करते हैं, कई बार पैराशूट से वो उड़ने का प्रयास करते हैं, कई बार पैराशूट खुलता ही नहीं है, हाँ, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको बहुत उसमें आनंद आता है। एक जगह मैंने रोड पे पढ़ा था, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, मतलब स्पीड जब हम जो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं तो मजा तो आता है लेकिन मृत्यु भी आती है, कई बार वो मृत्यु को लेकर आ जाती है। तो उनको बहुत सारी काम वासनाएं होती हैं, उनके कारण उनकी बहुत आसक्ति होती है। और ऐसे ही कई कुछ लोग होते हैं तमोगुणी होते हैं, हाँ, वो तमोगुणी होने के कारण वो कभी कभी वृक्ष का जीवन पाते हैं, पेड़ बनते हैं। और जैसे आपको पता होगा कि एक बार कुबेर जी के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों लोग कुछ अप्सराओं के साथ में मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे, नग्न बिल्कुल, और वहां पे नारद जी वहां से निकल रहे थे। तो नारद जी ने देखा, तो नारद जी को देख के जो अप्सराएं थी वो तो कपड़े पहन के किनारे हो गई, लेकिन ये लोग जो हैं बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहे नंगे। तो नारद जी ने बाद में इनको श्राप दिया कि तुम इस तरीके से खड़े हो जाओ, तुम पेड़ बन जाओ। पेड़ कैसा रहता है, पूरे सर्दी गर्मी बारिश में ऐसे ही खड़ा रहता है, नग्न खड़ा रहता है, उसके पास कोई कपड़ा नहीं रहता, तो वैसा कपड़ा वैसा शरीर उनको प्राप्त करने का जो है उनको श्राप दे दिया। बाद में हालांकि नारद जी ने श्राप दिया, नारद जी श्राप क्यों दिए, क्योंकि बाद में भगवान उनको बचाए, आके भगवान उनके लिए आए, तो वो लोग नारद जी के श्राप के कारण वो गोकुल गोकुल में भगवान के घर के आंगन में वो पेड़ बन गए, और बाद में भगवान कृष्ण ने स्वयं उनको जो है डिलीवर किया, उनको बचाया। तो इसके चक्कर में क्या होता है, उन तमोगुण के चक्कर में वो कहा जाते हैं बहुत बुरी स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो आलस आता है, नींद आती है बहुत। हाँ, कभी कभी हम लोग देखते हैं मंगल आरती में सुबह सुबह उठना होता है तो 3:30 बजे का अलार्म लगाते हैं, 3:45 का अलार्म लगाते हैं, और अलार्म बजता है तो बंद कर देते हैं, सोचते हैं 2 मिनट अच्छा और लेट लेता हूँ, 2 मिनट बाद उठूंगा, और 2 मिनट कितना बजता है, फिर सीधा 1 घंटा लेट हो जाता है। तो तमोगुण जो है वो अज्ञान को लेकर आता है और हमें पागलपन के द्वारा बांध देता है। अब देखिए, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख और ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। तो यहाँ पे कितने सारे फोटोज दिए हुए हैं, इसमें आधे का मैं नाम जानता हूं, आधों का नहीं जानता हूं, ये सब सतोगुणी लोग हैं। अब देखिए, रजोगुण द्वारा बंधन, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्य बदनाति कौन्तेया कर्म संगेन देहिनाम। वो सुअर की तरह कुछ भी खाता है और वो स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध होता है वो बहुत प्रगाढ़ होता है इसमें, तो कुत्ते की तरह वो जीवन जीता है। और ये देखिए, पैराशूट ग्लाइडिंग कर रहा है, कभी कभी पैराशूट खुलता नहीं, मैंने बताया जैसे आपको। और ये पेड़ बन रही है इस लड़की, अब वो नग्न रहना चाहते हैं, कपड़े कम पहनते हैं उस तरीके से। तो रजोगुण जो है उसमें क्या होता है, बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारी तृष्णाएं होती हैं, और जीव जो है सकाम कर्मों से बनता है। अब ये है तमोगुण, अज्ञान। अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के कारण पागलपन आता है, आलस आता है और नींद आती है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो देखिए, आई मिस यू, और ये कुछ कर रही है, वो सो रहा है, उसको नींद आ रही है, हाँ, ये सब क्या है, ज्ञान का से उत्पन्न तमोगुण है। अभी सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुणी जो व्यक्ति है वो कैसा रहता है, सुखी रहता है। रजोगुणी सकाम कर्म से बांधता है, वो कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और जो तमोगुण है तो आप देख रहे हैं नीचे, वो कैसे वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये 3 गुणों के अंतर्गत मनुष्य जो है रहता है। इन 3 गुणों में कंपटीशन रहता है हमेशा, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में हमेशा कंपटीशन रहता है। कभी सतोगुण हावी होता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। कैसे हावी होता है, जिस गुण को हम बढ़ावा देंगे वो गुण हावी हो जाएगा। अगर हम सतोगुण को पोषण देंगे तो सत्व बढ़ेगा, रजोगुण को पोषण देंगे तो रजस बढ़ेगा, तमोगुण को पोषण देंगे तो तमोगुण बढ़ेगा। तो पहले राजा लोग जो हुआ करते थे, रजो, ये राजा शब्द भी रजो से ही आया है, हाँ, वो लोग रजोगुणी होते थे। तो वो क्या करते, वो जरूरी है, वो प्रजा को प्रोटेक्शन देते थे, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, हाँ, तो कैसे है, राजा होके सबको बचाते थे। लेकिन यहां पे एक चीज समझने वाली है, जो रजोगुणी व्यक्ति है उसको सतोगुणी व्यक्ति से आदेश निर्देश प्राप्त करने चाहिए, गाइडेंस प्राप्त करना चाहिए। हाँ, जैसे छत्रपति शिवाजी का नाम लिया मैंने, तो उनके गुरु थे समर्थ रामदास और तुकाराम महाराज, वो उनको गाइड किया करते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड करने के लिए चाणक्य था। तो राजा जो है वो ऐसे जो राजा हुआ करते थे उनको राजा ऋषि बोला जाता था, राजा ऋषि जिनके गुरु कौन है वो सतोगुणी होते थे। तो ये इस प्रकार से। अभी इनमें स्पर्धा की बात चलती है, तो 14.10 रजस्तमश्चा विभूया सत्वं भवति भारत रजा सत्वं तमश्चैव तमासत्वं रजस्तथा। कभी कभी सतोगुण बाकी दोनों गुणों को प्रभावित कर परास्त कर देता है, कभी रजोगुण बाकी दोनों को परास्त करता है, और कभी तमोगुण दोनों को परास्त करता है। इस प्रकार हमेशा स्पर्धा चलती रहती है। तो बोलते हैं कि क्या आपने अपनी अच्छी और बुरी आदतों या अपनी उच्च और निम्न प्रकृति के बीच युद्ध का सामना किया है, कभी ऐसा हुआ है? ये होता ही है। फिर बोलते हैं सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशा उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वमित्युतः। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से अभी प्रकाशित होते हैं। तो अभी ये सत्वगुण जैसा हम आहार लेंगे उसके अनुसार व्यवहार होता है हमारा। हाँ, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे सत्वगुण के बारे में ज्यादा। अभी रजोगुण के बारे में चर्चा करते हैं। लोभा प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा मश्मः स्प्रहा रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे बढ़तरस्मा। रजोगुण मतलब आप उनकी जो डिजायर्स हैं, जो उनकी इच्छाएं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो लोग कैसे कार्य करते हैं, जैसे दूसरों को देखते हैं और उनके अनुसार और अच्छा करने का प्रयास करते हैं रजोगुणी लोग, मैं भी वही करूंगा। और तीसरा तमोगुण अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। वो तो तमोगुण में क्या रहता है, अज्ञानता रहती है, खास करके मोह रहता है, अंधकार रहता है, और ये भी बढ़ते रहते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। जैसे मैंने रजोगुण में बताया कि रजोगुण के लोग दूसरों को देख के वो भी करना चाहते हैं और उनसे अच्छा करना चाहते हैं। तो एक शब्द है एम्बिशंस, कि कुछ हमारे एम्बिशन रहते हैं, कुछ हमारा लक्ष्य रहता है कि उसको प्राप्त करना है। तो क्या वो नहीं होने चाहिए हमारे पास? हम कैसे समझ सकते हैं कि हम लोभी हैं या नहीं है? तो इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है लग्जरी वर्सेस नेसेसिटी। लग्जरी मतलब जरूरत से ज्यादा सुविधाएं, और नेसेसिटी मतलब जितनी आपको जरूरत है, जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो। तो जैसे मान लीजिए किसी के पास स्कूटर है या कार है, वो होना उसके लिए जरूरत है, वो जरूरत है इसलिए वो है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 5-6 साल की कमाई पूरा वो व्यय करके एक मर्सिडीज कार लेता है या फिर कोई BMW कार लेता है, तो उसका मतलब क्या है, वो लग्जरी है। स्कूटर होना, कार होना, वो जरूरत है, नेसेसिटी है। लेकिन अगर बड़ी महंगी कार लेना, वो भी दिखाने के लिए लोगों को, वो क्या है, वो लग्जरी में आता है। तो हर व्हीकल जो है उसकी एक लिमिटेड स्पीड होती है। हाँ, जैसे लूना है तो लूना की स्पीड होती है भाई 50-60 तक जाती है, उससे आगे नहीं जाती है। आप कोई बाइक लेंगे तो वो 120-130 तक जाती है, आप बढ़िया कार लेंगे तो 180-200 तक जाती है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी ऐसे ही है। हमारे शरीर के अनुसार अगर हम शरीर से काम लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम उससे ज्यादा काम लेने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए कि आपको रात की नींद भी नहीं आ रही है, आप अपने परिवार का ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या होगा, तो समस्याएं शुरू हो जाएंगी। आपसे आपका बॉस प्रसन्न नहीं रहेगा, घर पे पत्नी और बच्चे प्रसन्न नहीं रहेंगे, पत्नी बोलेगी मुझे डाइवोर्स दे दो, हाँ, क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो घर पे कुछ भी। तो बोलते हैं कि पैसा तो बहुत कमाया लेकिन प्रेम नहीं कमा पाया। तो बाद में क्या, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, पैसा बहुत कमाया लेकिन हार्ट प्रॉब्लम हो गया। तो रजोगुण में एक प्रकार का एक अति लोभ होता है, मतलब काम चल रहा है वो ठीक है लेकिन ज्यादा लोभ होना वो समस्या है। तो रजोगुण में एक अति लोभ होता है, इसलिए हमारे जीवन में हमको बैलेंस करके चलना चाहिए। किस चीज का बैलेंस? तो भौतिक संतुलन और आध्यात्मिक संतुलन बना के रखना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने शरीर को बना के रखना है तो योगा करना है, कुछ कसरत करना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरा दिन कसरत करते रहो और भगवान को ही भूल जाओ, कि भगवान के लिए समय नहीं है। अरे इस संसार में, इस जीवन में मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, मकान बनाना चाहता हूं, गाड़ी रखना चाहता हूं, हाँ, और इस तरीके से वो अंधा होकर इनके पीछे भागता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो रजोगुणी है। चलिए, सतोगुणी क्रियाएं लक्षण क्या होता है, इनकी धारणा बिल्कुल सही रहती है और आंतरिक और बाह्य स्वच्छता रखते हैं। तो इनके लक्षण क्या मिलेंगे, जैसे पुस्तकें पढ़ेंगे लोग, पौधों में पानी डालेंगे, भगवान की भक्ति से कुछ कार्य करेंगे, पारंपरिक संगीत सीखेंगे, आजकल का वो नहीं जो कुछ भी पता नहीं चलता म्यूजिक है कि अम्यूजिक है, और पढ़ाई लिखाई शिक्षण, ये सब आता है सतोगुणी क्रियाओं में। गुणों के अंतर्गत कोई कार्य कैसे करता है, वो 14वें श्लोक में से लेकर 18वें श्लोक तक तो बताया गया है। भगवान कहते हैं विभिन्न गुणों में मृत्यु के बाद क्या गति होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो 14 नंबर श्लोक में बोलते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देह भृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। बोलते हैं, कहते हैं कि जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, यानी वो ऊपर के लोकों में जाता है, हायर प्लैनेट्स, वो ऋषि की संगति प्राप्त करता है, ऋषियों की संगति प्राप्त करता है, देवताओं की संगति प्राप्त करता है। और रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगे सुजायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनि सुजायते। जो रजोगुणी होते हैं वो क्या होते हैं, वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेते हैं। हाँ, वो जैसे मान लीजिए कोई मर रहा है, शेयर मार्केट के बारे में सोचते सोचते मर रहा है, तो अंत में फिर से उसको मनुष्य जीवन मिलता है और फिर से शेयर मार्केट में ही वैसे जीवन उसका फिर से शुरू हो जाता है। तो ये मनुष्यों के बीच में जन्म लेता है रजोगुणी व्यक्ति। और जो तमोगुणी है, तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनि सुजायते, वो कहां जन्म पाता है, पशुओं के बीच में जन्म पाता है वो। तो ये बताया गया है दीर्घकालीन प्रभाव। अब गुणों के मध्यकालीन, दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म, अभी मध्यकालीन है, अभी क्या फायदा होगा, तो बोलते हैं कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसह फलम। सबका फल बताया है। पुण्य कर्म का क्या फल है, शुद्ध सात्विक निर्मल ऊर्ध्वम, ये फल रहता है। रजोगुण का दुखम, दुख मिलता है, लोभम और मध्य तिष्ठन्ति, और कहां रहते हैं, वो मध्य में रहते हैं। और तमोगुणी अज्ञान में होते हैं, अधोलोक जाते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमादमोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम, जो सतोगुणी होते हैं ज्ञान इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। रजसो लोभेव च, जो राजसिक होते हैं उनको लोभ रहता है, ये भी प्राप्त कर लूं, वो भी प्राप्त कर लूं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। और प्रमाद मोह तमसो, और जो तमसो तमोगुणी लोग होते हैं, भवतो अज्ञानमेव च, वो अज्ञान को प्राप्त करते हैं। ओके, अभी मृत्यु के बाद क्या होता है, 18 नंबर श्लोक में बताया गया है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। बोलते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुणी व्यक्ति है वो क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी जो है वो इसी पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में रहते हैं वो लोग नीचे नरक लोकों में जाते हैं। तो जो सतोगुण में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उच्च लोक, रजोगुण में तो इसी लोक में जहां हम रह रहे हैं वहीं पर फिर से जीवन मिलता है, और तमोगुण में नीचे की योनियां प्राप्त होती हैं, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर राक्षस, हाँ, या फिर जो अन्य जीव रहते हैं पाताल लोक तक, उन लोकों में जाने का संभावना रहता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है गुणों के बारे में जानना। अभी भगवान आगे बताएंगे कि किस प्रकार से इन गुणों से ऊपर निकला जा सकता है। 19 नंबर श्लोक से लेकर 27 नंबर श्लोक तक बोलते हैं नान्यम गुणे व्यह कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भ्यश्चा परम वेति मत भावा सोधि गच्छति। बोलते हैं, कहते हैं कि जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो परमेश्वर कौन, जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को जान जाता है। तो यहां पे समझने वाली बात है ये तीन चीजें जानना कि प्रकृति के गुण ही करता है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और भगवान है जो कि इनसे परे हैं। ये बात को जान लेना, वो क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, वो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो वो भगवान को दिव्य और गुणों के कर्ता के रूप में देखता है, भगवान को जानता है कि वो दिव्य है और जो गुण है वही कर रहे हैं, वो जीव कुछ नहीं कर रहा है, ना ही भगवान कुछ कर रहे हैं। उसके बाद गुणों के परे जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो क्या होता है, गुणानेतानतीत्य त्रिना देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तो अमृत मश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लागने में समर्थ होता है तो क्या होता है, वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है, और वो इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है, अमृत मश्नुते, अमृत को प्राप्त कर सकता है। तो यहां पे देखिए समझने वाली बात यह है, हम लोगों ने सातवें अध्याय में पढ़ा था कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, जो दुर्गा जी हैं वो बहुत कठिन है उनसे पार पाना, क्योंकि उनके पास क्या रहता है, तीन रस्सियां रहती हैं तीन गुणों के द्वारा, और उन रस्सियों से वो उन लोगों को बांधती हैं जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। अब देखिए जैसे मकड़ी है तो मकड़ी जाला बनाती है, लेकिन मकड़ी उस जाले में कभी खुद नहीं फंसती, हाँ बाकी अन्य सारे जीव फंसेंगे लेकिन वो जाले में नहीं फंसती है। ठीक वैसे ही ये सारी सृष्टि भगवान के द्वारा बनाई गई है, और भले ही ये जो जीव हैं या फिर ये जो प्रकृति के द्वारा तीन गुणों का प्रभाव है ये सब भी भगवान के सैंक्शन करने के बाद ही होता है, लेकिन भगवान इसमें नहीं फंसते, भगवान हमेशा इससे अलग रहते हैं, लेकिन हम जैसे जो सामान्य जीव हैं वो इसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को गुणातीत होना पड़ेगा, यानी गुणों से ऊपर निकलना पड़ेगा। गुणातीत कैसे हो सकते हैं, तो दो चीजें बताई गई हैं। पहला भगवान को दिव्य मानना, भगवान को गुणातीत मानना, और दूसरा गुण जो है वो सबसे सबको डांस करा रहे हैं लेकिन वो जीव जो है वो उससे फंसा नहीं है, बल्कि वो जीव उससे बचा हुआ है लेकिन वो इस शरीर को निशाना बना रहे हैं। तो गुण जो है वही कार्य कर रहे हैं, शरीर ये जो आत्मा है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, इस बात को जान लेना। और दूसरा श्लोक, गुणानेता नदित्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृत मश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लागने में समर्थ होता है तो वो इन सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का पान करता है, भोग करता है। अभी अर्जुन पूछेगा कि कैसे इन गुणों से परे जाया जा सकता है, कैसे इन गुणों से बचा जा सकता है। अर्जुन वाच कैलिंगे स्त्रीन गुणा नेतान तीतो भवति प्रभो किमाचारा कथम चैतान स्त्रीन गुणान वर्तते। तीन चीजें पूछता है अर्जुन गुणातीत व्यक्ति के बारे में, किन लक्षणों से वह जाना जाता है, कै लिंग है, उसका व्यवहार कैसा है, किम आचरः और कथम तीन गुणानति वर्तते, गुणों से परे जाने की विधि क्या है। ये तीन प्रश्न अर्जुन के हैं। तो भगवान 22 23 24 25 26 इसमें उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन अवदासीनो गुणैर्योन विचाल्यते गुणावर्तन्ते तेवं योवति तिष्ठति निंगते सम दुःख सुखा स्वस्था समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमान योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सउच्यते। वो गुणातीत होता है कौन, ये गुण बताए हैं, जानते हैं उनके बारे में। बोलते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनका जीवन मेरी पूरी तरह मेरी सेवा में समर्पित रहता है, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हुए वो परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो ये वाले श्लोक जो हमने भी बोले कौन से चैप्टर के थे, किसी को याद है, 10वें अध्याय में जो चतुश्लोकी भगवद गीता है ये वो है श्लोक। चलिए भगवान उत्तर क्या देते हैं सुनते हैं। भगवान कहते हैं 22 नंबर श्लोक में, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि नाम निवृत्तानि कांक्षति। जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, यानी आसक्ति भी है मोह भी है प्रकाश भी है, उस वो है तो उनसे घृणा भी नहीं करता ना तो जब वो चले जाते हैं तो उनकी इच्छा करता है। यहां पे फोटो में विदुर जी को दिखाया गया है, धृतराष्ट्र से विदुर जी बोल रहे थे कि जो दुर्योधन है ये बहुत खराब लड़का है तुम्हारा, आप इसको राज्य से निकाल दो नहीं तो बहुत समस्या आने वाली है, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। और उसी समय दुर्योधन आ गया, तो दुर्योधन के आने के बाद दुर्योधन तुरंत विदुर जी को गालियां देने लगा, बहुत उल्टा सीधा उसने बोला। तो विदुर जी बहुत अच्छे से राज्य में रह रहे थे लेकिन विदुर जी तुरंत राज्य को छोड़ के निकल गए। उन्होंने अपना धनुष और बाण जो थे वहीं पे गेट पे रख दिया और वहां से चुपचाप निकल गए। तो देख रहे हैं कि इतना सब होने पर भी ना तो वो घृणा करते हैं ना, और निकल गए तो कहां निकले, वो भगवान के उन लोकों में गए, उन धामों में गए जहां पे भगवान ने लीला किया है। भगवान कई बार आके वहां पे लीलाएं किए हुए हैं, ऐसे तीर्थ स्थलों में जाके वो रहने लगे। तो अभी 23 और 25 में बताते हैं कि ऐसा जो गुणातीत व्यक्ति होता है उसके बाहरी लक्षण क्या है। तो बोलते हैं उदासीना उदासीनो गुणैर्यो न विचालते गुणावर्तन्ति तेवं योवति तिष्ठति निंगते। बोलते हैं कि उदासीन बना रहता है वो व्यक्ति, वो जानता है कि केवल गुण ही काम कर रहे हैं, मैं कार्य नहीं कर रहा हूं, आत्मा कार्य नहीं कर रही है, इसलिए वो उदासीन न्यूट्रल बना रहता है और दिव्य बना रहता है। वो अपने आप में स्थित रहता है, सुख और दुख को एक समान मानता है, कभी उसको सुख मिला कभी उसको दुख मिला, वो सब दोनों को एक जैसा ही मानता है। वो सुख मिलने पे बहुत सुखी बहुत प्रसन्न नहीं हो जाता, दुख मिलने पे बहुत परेशान नहीं हो जाता। वो मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, उसके लिए वो सब समान दृष्टि है। वो अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान भाव रखता है, उसके फेवर में है तो भी समान भाव, और प्रतिकूल हो रहा है उसके फेवर में नहीं है तो भी समान भाव रखता है। जो धीर है और प्रशंसा बुराई मान और अपमान में समान भाव से रहता है, जो व्यक्ति शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, उसको गुणातीत कहते हैं। तो एक बार की बात है, एक बहुत बड़े संत हुए, उनका नाम था सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहा करते थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि हमको एक बहुत बड़े ज्योतिष ने बताया है कि आपके पास एक ऐसा पत्थर है, पारस पत्थर, जो कि लोहे को भी सोना कर देता है, लोहे को भी सोना बना देता है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ है तो सही। बोले कहाँ है? बोले वो अंदर जाओगे रूम में जहां डस्टबिन रखते हैं, डस्टबिन के अंदर पड़ा है। तो व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, डस्टबिन के अंदर पारस पत्थर को रखा है। तो उसने चेक करके देखा, लोहा से सोना बन गया। वो आया फिर से, बोला बहुत बहुत धन्यवाद, बोले ठीक है, और ये व्यक्ति लेके आ गया। रास्ते में आ रहा था तो सोचने लगा कि जो व्यक्ति पारस पत्थर को डस्टबिन में रखता है उसके पास कुछ और बड़ी पदार्थ होगा, कुछ और इससे भी बड़ा होगा जिसके कारण वो पारस पत्थर को डस्टबिन में रखा है। वो वापस आया सनातन गोस्वामी के पास, बोला गोस्वामी जी आप मुझे बताइए, आपके पास क्या इससे बड़ा भी कोई खजाना है क्या, जो लोहे को सोना कर देता है पारस पत्थर, इससे भी बड़ा कुछ है क्या आपके पास? तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ है ना। तो बोला हाँ मुझे वो चाहिए। तो बोले उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस पारस पत्थर को यमुना जी में फेंकना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। वो गया और यमुना जी में पारस पत्थर को फेंक के आया और अभी बोला अभी मुझे बताइए इससे भी बड़ा ज्वेलरी क्या है, इससे भी बड़ा गहना क्या है, इससे भी बड़ा आभूषण क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये वाला एक मंत्र है, ये इससे भी बड़ा आभूषण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जो है वो सामान्य लोहे को सोना बनाता है, लेकिन ये जो मंत्र है ये लोहे जैसे व्यक्ति को सोना जैसा व्यक्ति बना देता है। तो तुम इसको ग्रहण करो और अपने जीवन को शुद्ध बनाओ। वो व्यक्ति वास्तव में तुरंत फिर वो बहुत जल्दी ही भगवान का भक्त बन गया, बहुत उच्च कोटि का भक्त बन गया। सनातन गोस्वामी ने बाद में उसको दीक्षा भी दिया। तो कहने का तात्पर्य है वो मिट्टी का ढेला हो और सोना हो और चाहे तो पारस मणि ही क्यों ना हो, वो सबको एक जैसा देखता है। उसके लिए क्या है, सब वो उदासीन रहता है, सुख दुख में सेम रहता है, कोई उसका मान करता है कोई अपमान करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो भगवान के प्रति भक्ति करता रहता है शांति से, उस व्यक्ति को गुणातीत कहते हैं। अभी भगवान 26 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान बताते हैं कि शुद्ध भक्ति जो है वो गुणों के परे जाने की विधि है। माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, अवचलित रहता है और भक्ति करता रहता है, यानी कभी उसको दुख मिलता है कभी सुख मिलता है, कभी उसको जेल में डाल दिया जाता है कभी उसको हाँ सिंहासन पर बैठाया जाता है, कभी लोग उसके पैर पकड़ते हैं, कभी उसको पैर से मारते हैं, हर स्थिति में वो अविचलित रहता है और पूर्ण भक्ति करता रहता है। वो धीरे धीरे तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। आधुनिक जगत के महानतम उदाहरण है शीला प्रभुपाद। हाँ शिला प्रभुपाद अंतिम समय तक वो क्या कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम को रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो वो बता रहे हैं कि जब कोई श्रीमद् भागवतम की शरण लेता है तो केवल सतोगुण बचता है, रजोगुण और तमोगुण खत्म हो जाते हैं, और ये जो रजोगुण और तमोगुण हैं ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रकृति के गुणों से अतीत कहलाता है। इस व्यक्ति ने क्या किया है, सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। अभी प्रभुपाद जी जिस स्थिति में यहाँ पे श्रीमद् भागवतम को रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उसका तात्पर्य रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उनकी उम्र 81 वर्ष है, 81 ईयर्स है, और वो बेड पे हैं और वो खा पी भी नहीं रहे कुछ, लेकिन भगवान की भक्ति करने के कारण वो भगवान के सेवा जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी भी उस बेड पे लेटे लेटे, जबकि उनके जीवन के अंतिम दिन चल रहा है ये, उस दिन भी वो श्रीमद् भागवतम पे टीका जो है रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जिसको बाद में जो है लिखा जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो अविचलित रहता है जीवन की परिस्थितियों से, बहुत पेन हो रहा है, बहुत टाइम खराब चल रहा है, बारिश चल रही है, सर्दी है, गर्मी है, ये इन सब चीजों से अविचलित रहते हुए जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति में लगा रहता है वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और वो ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, ऐसे ही एक बहुत हमने आपको एक उदाहरण शेयर किया था, भरत महाराज। भरत महाराज जिनका वो एक हिरण के कारण उनका जो है उनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, और अगला जन्म उनको मिला जड़ भरत का। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके वो जो है रहते थे, बिल्कुल अजीब से रहते थे। एक दिन वो खेत पे बैठे हुए थे और वहां से एक राजा जो है वो जा रहा था, राजा को पालकी में लोग लेके जा रहे थे, तो चार जो है उठाने वाले थे और उसमें से एक जो उठाने वाला था उसकी हेल्थ खराब हो गई। तो राजा ने कहा कि देखो आसपास में कोई ऐसा तगड़ा व्यक्ति हो उसको लेके आ जाओ। तो देखा जड़ भरत बैठे हुए हैं, लोगों ने जड़ भरत से बिना कुछ पूछा उछा नहीं और उनको लेके चल दिए, लेके चल दिए और उनको पालकी में लगा दिया। अब चलने लगे पालकी लेकर, पर रास्ते में जहां कहीं भी चींटी इत्यादि दिख जाती थी तो जड़ भरत जो है वो स्थान पर कूद जाते थे, वो चींटी पे पैर ना पड़े। तो इस कारण से क्या हो रहा था, राजा की जो पालकी थी वो बार बार हिल रही थी। तो राजा ने डांट लगाई, कौन है ऐसा कर रहा है? तो सबने बताया कि वो नया आया वो ऐसा कर रहा है। तो राजा ने उसको डांटा, फिर थोड़े से बाद फिर से ऐसा हुआ, फिर से डांटा, फिर तीसरी बार ऐसा हुआ तो फिर से डांटा। इस बार तो उसने बहुत उल्टा सीधा बोला। तो जड़ भरत जो है उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा कि आप स्वामी हैं, आप क्या नेक्स्ट लाइफ में स्वामी रहेंगे, नेक्स्ट से नेक्स्ट लाइफ में स्वामी रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे बोल रहे हो कि मैं मोटा हूं, अरे आत्मा कोई मोटा पतला नहीं होता, आत्मा का साइज सेम रहता है। और इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। अभी राजा को एहसास हुआ कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो राजा ने तुरंत उनसे माफी मांगनी शुरू किया। तो जो संत होते हैं उनका हृदय जो ऐसा उनका हृदय ऐसा होता है, उनका व्यवहार ऐसा होता है। कहा भी जाता है संत हृदय नवनीत समाना, जो संतों का हृदय है वो मक्खन के समान कोमल होता है। तीन चीजें खास करके उनके अंदर देखी जाती हैं। पहला उपकारिता, वो दूसरों के ऊपर खूब उपकार करते हैं। और दूसरा सहनशीलता, वो बहुत सहन करते हैं, लोग उनसे गलत आचरण भी करते हैं फिर भी वो उनको सहन करते हैं। और तीसरा भगवान की ओर अनन्यता, यानी भगवान को कभी भी वो त्यागते नहीं है, भगवान की भक्ति को त्यागते नहीं है कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। रूस में रसिया में जब भी बहुत प्रचार करना बहुत कठिन था, वहां पे अगर भक्त लोग जो हैं कोई दो लोग भगवान के बारे में डिस्कस करते हुए पाए जाते थे तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। हाँ, और कोई किताबें भी प्रिंट करता हुआ पा गया, भगवान के बारे में कुछ भी प्रचार करते हुए पाया जाता तो जेल में डाल देते थे और बहुत मारते थे, खाने को कुछ नहीं देते थे। हाँ, तो उस स्थिति में भी कोई लोग कई भक्तों ने उस समय भी जेल में रहते हुए भी अपना जप करना नहीं छोड़ा, चार नियमों का पालन करना नहीं छोड़ा, इस प्रकार से सहन किया उन्होंने। तो एक बार एक व्यक्ति आया, वो प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आया था, बोला मुझे प्रभुपाद जी से कुछ क्वेश्चन पूछना है। लेकिन उनके शिष्य जान गए कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो वो प्रभुपाद जी से मिलने नहीं दे रहे थे उनको, उस व्यक्ति को। तो प्रभुपाद जी को पता चला, तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है उसको आने दो अंदर। और वो आया और प्रभुपाद जी के ऊपर खूब चिल्लाने लगा, चिल्ला लिया। प्रभुपाद जी के चिल्लाने के बाद वो चला गया। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने जरूर कुछ पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, उस वजह से ये मेरे साथ हुआ है। अभी वो कुछ भी बोल सकते थे, अपने शिष्यों को डांट सकते थे कि क्यों उसको बुलाया, कौन था वो, अंदर क्यों भेजा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको सहन किया। तो ये सारी जो सहनशीलता है, उपकारिता है, भगवान की ओर जो अनन्यता है, वो सब भक्तों के अंदर आ जाती, संतों के अंदर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो तुल्यार्थ दर्शी ना, वो सबको एक नजर से देखते हैं। समलोष्ट्रास्त कंचना, वो मिट्टी का ढेला हो या सोना हो, हाँ, वो सबको एक नजर से देखते हैं, चाहे पत्थर हो। ऐसे ही प्रभुपाद जी कभी कभी रोल्स रॉयस करके जो बड़ी गाड़ियां होती हैं अमेरिका इत्यादि बड़े देशों में पाई जाती हैं, उनमें भी बैठते थे, हाँ, जो बहुत महंगी होती हैं। और इंडिया आते थे तो बैलगाड़ी में भी बैठते थे, बोलते थे मुझे बैलगाड़ी में बैठना है। तो उनके लिए वो गाड़ी और वो गाड़ी दोनों एक ही जैसी। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, प्रभुपाद जी आप इतनी बड़ी गाड़ी में बैठते हो, इतनी महंगी गाड़ी में बैठते हो। प्रभुपाद जी ने कहा, सुनो, मैं आध्यात्मिक जगत का दूत हूं, आई एम द एम्बेसडर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मेरे लिए सोने की गाड़ी होनी चाहिए। वो तो ये यहां पे फाइबर की है तो मैं फाइबर की गाड़ी में एडजस्ट कर रहा हूं, सोने की गाड़ी मेरे लिए होनी चाहिए। लेकिन अभी कोई कहे कि प्रभुपाद जी अटैच है, तो प्रभुपाद जी अटैच नहीं है, ना तो उस गाड़ी से अटैच है, ना इंडिया में मिलने वाली बैलगाड़ी से अटैच है, लेकिन प्रभुपाद जी अपना कार्य में लगे हुए हैं। तो तुल्यार्थ दर्शिना, उनके लिए सब समान है, इस भाव से वो रहते हैं। निंदा होती है, स्तुति होती है, वो सेम भाव रखते हैं। जब निंदा होती तो गुस्सा नहीं हो जाते, स्तुति होती तो बहुत खुश नहीं हो जाते। तो ये सिम्टम्स दिए गए हैं गुणातीत व्यक्ति के। अभी गुणातीत व्यक्ति जो इन गुणों को पार कर चुका है उसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन हम सब लोग जो है वो किसमें है, हम गुणों में बंधे हुए हैं, तो हमारे अंदर ये लक्षण नहीं पाए जाते। इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई कुछ भक्त होते हैं वो गुणों के अंदर ही भक्ति करते हैं, हम सब लोग गुणों के अंदर ही भक्ति कर रहे हैं, तो कुछ तमोगुणी भक्ति भी करते हैं। कभी कभी वो भक्ति करते हुए भी हिंसा करते हैं, उनके अंदर दंभ होता है, ईर्ष्या होती है दूसरों के अंदर देख के, कोई दूसरे की बड़ाई करता है तो उनको उनका हृदय जलता है। तो भक्ति जब इस प्रकार से करते रहते हैं तो शुद्ध होने पर हमारे ऊपर इन गुणों का फर्क जो है वो कम होता जाता है। इसलिए हमें भक्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही हम इन तीन गुणों के ऊपर उठ पाएंगे। सतोगुण जो है वो इन तीनों गुणों में अच्छा है, रजोगुण और तमोगुण से अच्छा है सतोगुण। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सतोगुण में रहता है, तो सतोगुण में रहना मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि आप एयरपोर्ट पे आ गए, एयरपोर्ट पे आ गए, वो सतोगुण। अभी जब आप एरोप्लेन में आ गए तब आप समझिए आप शुद्ध सतगुण में रह रहे हैं, यानी तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। तो वो वैकुंठ का गुण हो गया, विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व। लेकिन एयरपोर्ट पे आ जाना वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी आप करेंगे क्या, एयरपोर्ट पे हैं तो आप फ्लाइट को पकड़ेंगे, तो फ्लाइट कौन सी है, उसमें शुद्ध सत्व वाले लोग ही जा सकते हैं। तो जीव को एटलीस्ट तमोगुण और रजोगुण को पार करना चाहिए और इस प्रकार कम से कम सत्वगुण तक आना चाहिए। ओके, तो अभी ये आखिरी श्लोक है भगवद गीता 14वें अध्याय का। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भगवान बोलते हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं वो व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है और इसमें बोल रहे हैं इस श्लोक में कि उस ब्रह्म का आश्रय मैं हूं, यानी वो मेरी शरण ग्रहण करता है और बोलते हैं कि वो ब्रह्म जो है वो अमर्त्य है, अविनाशी है और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भक्त जो है वो भगवान की सेवा चाहते हैं, वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना चाहते। अभी ये फोटो आपको दिख रही है इस स्लाइड में, इस फोटो में देखिए भगवान कृष्ण के चारों ओर प्रकाश है। वो जो प्रकाश है उसको बोला जाता है ब्रह्म। हाँ, कुछ लोग जो कम बुद्धिमान होते हैं वो क्या समझते हैं, इस प्रकाश को ही भगवान समझ लेते हैं, वो ये नहीं जान पाते कि प्रकाश भगवान से निकल रहा है। तो ऐसे लोग ब्रह्म को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये ब्रह्म जो है मेरे से निकला हुआ है, मैं इसका आश्रय हूं, मैं इसका शेल्टर हूं। अमृत स्यावेश्चा, जो अमर्त्य है और शाश्वत है, धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्यचा, वो चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो ब्रह्म जो है वो भी कहां से निकला हुआ है, वो भगवान से निकला हुआ है, ये बताते हुए भगवान जो है इस अध्याय को यहां पे विराम देते हैं। अभी अगली क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। हाँ, फेवरेट चैप्टर जो है भगवद गीता का कह सकते हैं, छोटा चैप्टर है, 20 श्लोक ही हैं उसमें शायद, वो बहुत सुंदर श्लोक है और पुरुषोत्तम योग उसमें बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम लोग अभी शनिवार को उसके बारे में सुनेंगे। तो आज 14वां अध्याय गुरुवार हो गया, कल छुट्टी है, परसों फिर हम क्लास रखेंगे जिसमें हम 15वें अध्याय के बारे में सुनेंगे। आज के सत्र में हमने चार चीजें डिस्कस किया, तीनों गुणों के बारे में और कैसे तीनों गुणों के बीच में प्रधानता के लिए स्पर्धा रहती है, कभी सतोगुण हावी होता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, और बाद में हमने डिस्कस किया कि इन गुणों के अंतर्गत रह के किस प्रकार से व्यक्ति कर्म करता है, और फिर लास्ट के श्लोकों में 19 से 27 में हमने डिस्कस किया कि पवित्र जीवन कैसे जिया जा सकता है, कैसे व्यक्ति इन गुणों को पार कर सकता है। और अंत में 27 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, कहते हैं कि मैं जो है मैं ब्रह्म का आश्रय हूं, जो ब्रह्म ज्योति है उसका आश्रय मैं हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस अध्याय जो है समाप्त होता है। हम लोग अभी नेक्स्ट शनिवार को 15वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।